ऐरोला पुस्तक 12वीं लेक्चर नंबर 12।
ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम सुतात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं जेते केवलदंशन नानुवजोगे हि जुगवदुवजोता ते केवलिनोपणमिय ओच्छं हुवजोगमनियोगम्।
यह श्री भीष्म आचार्य रचित जेदोला टीका है जो कषाय पाउर तथा चुनिक रुद्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं बंदर भट्टारक तथा एकेश्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 12वीं पुस्तक जो उपयोग नाम का अर्थाधिकार है वो जोगो, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 135 पर आ गए। 135 ये अपना विषय किस बारे में चल रहा है, तो कषाय के उदय स्थानों के बारे में। कषाय के उदय स्थान कितने हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी उसमें तो असंख्यात लोक प्रमाण षष्ठान बुद्धि के स्थान है। उसमें कितने स्थान जीवों से सहित है, सभी तो नहीं हो सकते एट ए टाइम किसी एक समय में, तो यदि एक एक स्थान में एक एक जीव हो जाए, त्रसों की बात है यहाँ पर, तो जितने त्रस जीव है उतने स्थान जीवों से सहित हो सकते हैं, ये बात पहले बता चुकी। अब बताते अतीत काल की अपेक्षा से, जब कभी किसी एक समय में किसी एक स्थान में अधिक से अधिक जीव कितने थे, तो कहते अवली के असंख्यात हुए भाग प्रमाण जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। फिर भी ये जो प्रमाण है अवली का असंख्यात भाग, तो जघन्य से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में उतना का उतना एक भी जीव बढ़े नहीं, इतने अवली के असंख्यात। फिर एक जीव बढ़ा, फिर और एक जीव बढ़ा, फिर और एक जीव बढ़ा, ऐसे करते करते संख्यात गुणा हो गया, यानी संख्यात अवली हुआ ना, नहीं संख्यात अवली नहीं, अवली का असंख्यात भाग संख्यात गुणा हुआ, अवली हो जाए तो असंख्यात गुणा हो जाए। दोबारा मैंने गलत बताया, अवली का असंख्यात भाग संख्यात गुणा हुआ, यानी पहले कैसे हुआ, दो गुना हुआ, दो गुना हुआ, फिर चार गुना हुआ, आठ गुना हुआ, सोलह गुना हुआ, 32 गुना हुआ, संख्यात गुना हुआ। तो जहाँ मैक्सिमम हुआ उसको यवमध्य कहते हैं। फिर ऊपर इसी पद्धति से यानी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान उतने के उतने जीव, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, तो जैसे नीचे जो हम कहेंगे बढ़ते हुए है और ऊपर घटते हुए है, तो नीचे का जितना अधवान देखा था उससे ऊपर का जो अधवान है वो असंख्यात गुना है, ये बात अपनी चली थी। उसके लिए वो गुण वृद्धि के स्थान भी कैसे निकालना उसकी भी बात थी, और उसके लिए वो आधा था यानी गुणहानि का प्रमाण सेम है सर्वत्र, ये बात उन्होंने बताई थी और उसका कारण भी उन्होंने विस्तार से देखा था। अब यहाँ जो एक सौ चौतीस यहाँ उसी को फिर वह कैसे ऐसा है ना, तो उसको पहले वाली शंका फिर देखते हैं, 134 की शंका फिर दोबारा पढ़ते हैं। परंतु यह इष्ट नहीं है, अभी कौन सा इष्ट नहीं है तो उसके लिए फिर पहले तो। यहाँ तो कहते 291 में क्या कहा देखो, कि इन्हीं में से एक अंक के प्रति प्राप्त जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण अधस्तन नाना गुणहानि शलाकाय होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, तथा एक अंक कम करके शेष उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विरलों के प्रति प्राप्त जघन्य परिता संख्यातों के अर्धच्छेदों को ग्रहण करने उनको मिलाने पर। इसके लिए हमने उदाहरण लिया था चार को जघन्य परिता संख्या माना था और जघन्य परिता संख्या को जघन्य परिता संख्या बार लिख के गुणा करने पर आवली का प्रमाण आता है। तो हमने चार को चार बार लिखकर गुणा किया तो 256 आए। तभी 256 का असंख्या तो अभाग करना है हमको, तो कौन सा हो सकता है? चार भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। तो हमने उसको जघन्य परिता संख्या से भाग दिया, आवली को जघन्य परिता संख्या से भाग दिया, यानी 256 को 4 से भाग दिया तो कितने आए? 64 आए। ये कैसे निकाले? तो विरलन किया 4 का, जघन्य परिता संख्या का विरलन कर दो और उसके ऊपर आवली को दे दो तो क्या होगा? हर एक के ऊपर जघन्य परिता संख्या, जघन्य परिता संख्या, यानी 4 का विरलन एक एक होगा और हर एक के ऊपर 4 4 4 4 आ जाएगी। अब उसमें जो एक के ऊपर जो 4 है उसको अलग रखो, तो उसको अलग रखेंगे तो विरल में से कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, यानी जघन्य परिता संख्या में से एक कम रह गया, उसी का तो उत्कृष्ट संख्या रहेगी। तो ये जघन्य परिता संख्या एक निकाल लो तो बाकी उत्कृष्ट संख्या प्रमाण जघन्य परिता संख्या को आपस में गुणा करो, अपनी भाषा में 4 को 3 बार आपस में गुणा करो तो 64 हो जाएगी। तो 64 और 4 ऐसे हमने देखे, यानी 64 ये 256 का असंख्या तो भाग ऐसा, यानी हमने हमारे उदाहरण में चौथा भाग 4 को मैं संख्या कह लें। तो यहाँ यही पूछा था उन्होंने कि ये तो एक अंक के प्रति कितना हुआ? तो 4 आया, और उसका अर्धच्छेद कितना? तो 2। वो क्या है? अधस्तन गुणानिया, और बाकी कितने रहेंगे? 4 4 और 4, उसके अर्धच्छेद 2 और 2 और 2, 6 हो गए, वो ऊपर के गुणानी हो गए,
ये संख्या गुणा हो गए।
हाँ, तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे है ऐसा इष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार न करने पर इस कथन का अधस्थन नाना गुणानी शलाकाओं से उपरिम नाना गुणानी शलाकाएं असंख्यात गुणी है इस प्रकार कथन करने वाले इस सूत्र के साथ विरोध आता है, इसलिए यह घटित नहीं होता। ये उनका प्रश्न था, संख्यात गुणा हो गया ना, क्योंकि दो 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 कितनी बार वो हमने लिया था? वो 4 का 2 करके 3 बार लिया था, यानी संख्यात बार लिया, तो इससे वो संख्यात गुणा हो गया। तो कहते हैं ये सूत्र के साथ विरोध आएगा, पर पहले हमने देख चुके हम नीचे की नाना गुणानियों से ऊपर की नाना गुणानियां असंख्यात गुणा, अब उसका समाधान करें। यह कहना सत्य है क्योंकि जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण अधस्तन नाना गुणानी शलाकाओं को ग्रहण करने पर, यदि नीचे की नाना गुणानी जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण यदि हम स्वीकार करते हैं तो उपरिम नाना गुणानी शलाकाएं उनसे संख्यात गुणी होती है। ये बात ख्याल में आई ना? इसे छोड़कर उनका असंख्यात गुणा होना संभव नहीं यदि हम वो प्रमाण लेंगे तो की बात, किंतु एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण अधस्तन नाना गुणानी शलाकाओं को ग्रहण कर। अब ये जो नाना गुणानी जो हमने देखी वो कितनी लेनी है? एक कम करना, अर्धच्छेद को एक कम करना। जो हमने जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण नाना गुणानियां मान ली थी उसके बदले उसमें से एक कम कर दो, प्रकृत अर्थ का समर्थन करना चाहिए तो वो असंख्यात गुणा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से ग्रहण करने पर उपरिम नाना गुणानी शलाकाओं का असंख्यात गुणा होना संभव देखा जाता है। अब शंका वह कैसे? क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, हमने देखा था ना 4 को एक 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 4 बार लिखा था उसके बदले हमने 3 बार लिया था तो उसको उत्कृष्ट संख्यात कहेंगे। उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर पूर्वोक्त प्रमाण एवं मध्य के अर्धच्छेदों को समान खंड कर देय रूप से देने पर, एवं मध्य के अर्धच्छेद यानी वहाँ जो आवली का असंख्यात का भाग जीवों का प्रमाण है उसके जो अर्धच्छेद है उसको यदि हम समान रूप से देते हैं प्रत्येक एक के प्रति जघन्य परिता संख्यात अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ अर्धच्छेदों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, नहीं समझे? हमने जो पहले मान लिया था ना,
तीन का विरलन किया ना अभी,
देखो ये हमने चार एक निकालो अलग, हाँ। और यहाँ तीन रहेगी उत्कृष्ट संख्या क्रमांक, उसके ऊपर चार को नहीं देना, उसके अर्धच्छेदों को देना, यानी दो 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 देंगे हम। तो उत्कृष्ट संख्या क्रमांक जो संख्या है उसमें यौ मध्य के जो अर्धच्छेद है अर्धच्छेदों को देना। तो यौ मध्य के अर्धच्छेद कितने, अपने गणित में 256 अगर हम मान लेते हैं और 64 हमने माना था,
6
हो गए, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो दो और दो और दो आए ना, वही बात बता रहे। प्रत्येक एक के प्रति जघन्य परिता संख्या अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है, इसका अर्थ ख्याल में, हर एक के प्रति दो दो आए ने क्या चार चार का अर्धच्छेद हुआ। यवो मध्य अपना 64 और उसके अर्धच्छेद है 6, जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद यानी ये 2। यहाँ पर सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से एक एक अंक को निकाल कर पृथक स्थापित करना चाहिए। अभी हमने दो ही पकड़े, उसमें अभी एक एक ऐसा निकालेंगे, परंतु वहाँ तो जो कोई अर्धच्छेद का प्रमाण है उसमें से एक एक निकालेंगे। इस प्रकार स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति निकालने के बाद शेष संख्या एक कम जघन्य परिता संख्या अर्धच्छेद प्रमाण अंक वाली हो जाती है, यानी यहाँ हम जो दो दो डिस्ट्रीब्यूट किए थे अर्धच्छेद उसमें से एक एक कम कर दो तो एक एक रह जाएगा ना वहाँ पर, तो कितना रह गया, एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद। सब अंकों के प्रति प्राप्त निकाले गए अंक भी एकत्र मिलाने पर उत्कृष्ट संख्या प्रमाण हो जाते हैं। अभी हमारे गणित में हमने तीन बार दो दो लिखा था, हर एक में से एक एक निकाला तो तीन हो गए अपने उदाहरण में उत्कृष्ट संख्या तो गए, घर में आ रही है ना बात। पुनः इन्हें एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों से भाजित कर भाग करने से जो संख्यात अंक लब्ध आवे उनको पहले के उत्कृष्ट संख्या संबंधी विरलन के पास विरलित कर उन अंकों को समान खंड कर देय रूप से देने पर सांप्रतिक विरलन के प्रत्येक एक के प्रति एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण अंक प्राप्त होते हैं। हमें उदाहरण लेना है तो भी बड़ा लेना पड़ेगा, 16 वगैरह का
एक तो नहीं बचेगा,
क्योंकि एक से नहीं होगा ना, क्योंकि तीन को एक से भाग देंगे तो तीन हम दूसरे संदृष्टि बनाकर देख सकते हैं। हम 16-16 की बनाएंगे जो पनटी हो जाती है, हमने 256 की बनाई थी ना, अभी हम 16 की बनाएंगे, यानी ये हमारे पास पनटी प्रमाण है, आवली के बदले हमने पनटी मानी। तो पनटी का विरलन कैसे होगा, विरलन और देय समान नहीं होते हैं ना,
16-16-16 चार बार लिखिए,
नहीं 16 चार बार लिख के नहीं चलेगा, 256 का जैसा आता है वैसा उसका नहीं आता है, विरलन भी उतना ही चाहिए और देय भी उतना चाहिए। अच्छा हम बदल करेंगे, 16-16-16 नहीं, 16 बार नहीं कर रहे हैं हमको, 8 वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, नहीं चलेगा,
8 को 8 बार ही लिखना पड़ेगा,
8 को 8 बार करो या 16 को 16 बार करो,
बहुत मुश्किल हो जाए।
हाँ, ये नहीं क्या,
नहीं थोड़ा समझने के लिए
चार का ही आसान होता है। उन्होंने क्या किया, चार का विरलन किया, हर एक के ऊपर चार दिए और इसको अलग निकाला, और जो चार गुना चार ये क्या है, 64 है, वो क्या है हमारा, अवलिका संख्या का भाग, कैसे निकला? 256 को हमने 4 से भाग दिया तो निकला। अब क्या करना है? जो यवमध्य, ये यवमध्य की संख्या है, तो यवमध्य का जो अर्धच्छेद है उसको उत्कृष्ट संख्या प्रमाण में डिवाइड कर दो। ये तीन बार है, उसमें से एक निकाल दिया, चार बार रखते तो जगन्य परिकार संख्या, उसमें से एक हटा दो तो उत्कृष्ट संख्या रह गए। उसमें हमने अभी चार चार दिए थे, उसके बदले उसके अर्धच्छेद देना है। या ऐसा कहो कि 64 के अर्धच्छेद 6 है, वो ये तीन में डिस्ट्रीब्यूट करो तो दो दो आएगी। अब ऐसा करने पर हम उन्होंने क्या बताया था कि वो संख्या गुणा हो जाती है, अगर हम नीचे ऊपर की देखेंगे तो ये नहीं घटित होता है। उसके लिए भी आगे का यहाँ बता रहे हैं कि उत्कृष्ट संख्या का विरलन किया, ये वो मध्य 64 है उसके अर्धच्छेद 6 होते, उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। ये समाधान फिर पढ़ेंगे हम। उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर पूर्वोक्त प्रमाण एवं मध्य के अर्धच्छेदों को समान खंड रूप देह रूप से देने पर प्रत्येक एक के प्रति जघन्य परिता संख्यात अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। जघन्य परिता संख्या हमने चार माना था, उसका अर्धच्छेद है 2। यहाँ पर सब अंकों के प्रति प्राप्त राशि में से एक एक अंक को निकाल कर पृथक स्थापित करना। ये एक एक और एक हमने निकाले अलग से। इस प्रकार स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति निकालने के बाद शेष संख्या कितनी रहेगी? यहाँ पर
एक एक
तो कहते हैं छुड़ गया, फिर पढ़ती हूँ। इस प्रकार स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति निकालने के बाद शेष संख्या एक कम जघन्य परिता संख्या अर्धच्छेद प्रमाण अंक वाली हो जाती है। यानी यहाँ दो थे जघन्य परिता संख्या का अर्धच्छेद, उसमें से एक रह गया माइनस वन। अभी हमने दो ही पकड़े इसलिए एक रहता है, यहाँ हम अधिक पकड़ते तो उसमें कम रह जाता। अब सब अंकों के प्रति प्राप्त निकाले गए अंक भी एकत्र मिलाने पर उत्कृष्ट संख्या प्रमाण हो जाते। तीन बार एक एक निकाला तो उसकी संख्या भी कितनी रहेगी? उत्कृष्ट संख्या। पुनः इन्हें एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों से भाजित कर भाग करने से जो संख्यात अंक लब्ध आवे उनको पहले के उत्कृष्ट संख्या संबंधी विरलन के पास विरलित कर उन अंकों को समान खंड कर देह रूप से देने पर सांप्रतिक विरलन के प्रत्येक एक के प्रति एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण अंक प्राप्त होते। यहाँ भी वही पर क्या हुआ, ये जो तीन आए, तीन को क्या किया हमने, यहाँ जो रह गए बाकी उससे भाग दिया। तीन को एक से भाग दिया तो भी तीन ही आए, तो यहाँ एक एक लिखा और उसमें वो तीन विरलित कर दिए तो हर एक के प्रति एक एक आया। ये एक एक क्या है? तो जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों से एक कम है, यानी इसमें भी वो फिट हो रहेगा नहीं। अब यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण अधस्थन नाना गुणानी शलाकाएं होती हैं। यानी अधस्थन नाना गुणानी शलाकाएं अपने हमने जो मान ली यहाँ पर एक होगी, और सांप्रतिक अंकों के प्रति रखी गई संख्या प्रमाण और दो अंक कम आदि विरलन के अंकों के प्रति प्राप्त संख्या प्रमाण उपरिम नाना गुणानी शलाकाएं होती हैं।
दो अंक कम आदि विरलन के अंकों के प्रति के पास
ये नाना गुणानी शलाका यहाँ लिए तो ऊपर कितने दो कम आदि विरलों के प्राप्त संख्या प्रमाण उपरिम नाना गुणानी शलाका है। एक यहाँ ली तो ऊपर कितनी रहेगी? पांच रह जाएगी ना। ऐसा ग्रहण करने पर हम ये बड़ा अगर गणित लेंगे ना तो ये ठीक यानी 16 को 16 बार लेंगे तो
ये
घटित होगा, परंतु वो गणित करने में हमें तकलीफ होगी। ऐसा ग्रहण करने पर अधस्तन नाना गुणानी शलाका उनसे उपरिम नाना गुणानी शलाकाएं निस्संशय असंख्यात गुणी हो जाती। पहले हमने क्या माना था, नीचे की दो और ऊपर की चार वाणी थी ना,
छह वाणी थी, दो दो दो
दो दो दो तो टोटल थी।
हाँ
टोटल थी नहीं,
संख्यात गुणी हो
जाती, क्योंकि संख्यात अंक अधिक जघन्य परिता संख्यात प्रमाण अंकों की यहाँ पर गुणकार रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है। संख्यात अंक अधिक जघन्य परिता संख्यात अंकों की यहाँ गुणकार रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इस पद्धति से जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों को दो अंक कम, तीन अंक कम आदि के क्रम से घटाकर अधस्तन नाना गुणानी शलाकाओं के प्रमाण का अनुगम तत्प्रायोग्य संख्यात प्रमाण संख्या के प्राप्त होने तक आगमानुसार करना चाहिए। हमने पहले तो जघन्य परिता संख्यात मान लिया था, अब उसमें वो अर्धच्छेदों को एक कम दो कम इस तरह से ले लिया। अतः अधस्तन नाना गुणानी शलाकाएं संख्यात होकर वे उपरिम नाना गुणानी शलाकाओं से असंख्यात गुणी हीन होती है, यह सिद्ध हुआ। यानी हमने पहले क्या माना था, नीचे की कितनी है तो जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण, तो ऊपर की उससे संख्यात गुणी हो जाती। अब नीचे की कितनी मान ली, जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद में से एक कम, तो ऊपर असंख्यात गुणा हो जाता है। फिर दो कम, तीन कम, ऐसे जितने कम करो तो असंख्यात गुणा रह जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम यवमध्य के अर्धच्छेदों के असंख्यात वे भाग प्रमाण अधस्तन नाना गुणानी शलाकाएं, क्या कहते हैं, पहले हमने क्या किया था, यवमध्य के अर्धच्छेद हमने जघन्य परिता संख्यात में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक कम जघन्य परिता संख्यात, और उसमें हमने जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद प्रमाण पहले नाना गुणानी शलाकाएं नीचे मान ली थी, अब उसमें एक कम दो कम वगैरह करो तो कितनी अभी लेना है। यहाँ पर तो यवमध्य के अर्धच्छेदों के असंख्यात विभाग प्रमाण अधस्तन नाना गुणानी शलाकाएं और उन्हीं अर्धच्छेदों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण उपरिम नाना गुणानी शलाकाएं होती है, ये अभी सिद्ध करें। पहले तो हमने इसे मानकर वे संख्यात गुणा आता था, इसलिए अभी उनको यथार्थ में बता रहे हैं। इस प्रकार इस अर्थ का कथन कर अब इस प्रकार से नाना गुणानी शलाकाओं को ग्रहण कर जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों के प्रमाण का निर्णय करते। अभी क्या नक्की किया हमने, यवमध्य के जितने अर्धच्छेद है उसका असंख्यात का भाग नीचे की गुणहानियां है, नंबर ऑफ गुणहानियां, नाना गुणहानियां, और असंख्यात बहुभाग ऊपर की। पहले हमने क्या किया, ये तो 64 के अर्धच्छेद 6 थे, उसमें 2 और 4 किया तो वो तो संख्यात गुणा हो गया। अब हमने उसको सिद्ध किया था ना, 1 और 5 करो, हाँ 1 माइनस करो, तो वैसे ही उन्होंने 2 माइनस किए, 3 माइनस किए, इस तरह से ले लेना उसने। तो नीचे के कितने हैं, तो जो यवमध्य के अर्धच्छेदों का प्रमाण है उसको असंख्यात से भाग दो, एक भाग प्रमाण नीचे की, बहुभाग प्रमाण ऊपर की। ये तो अभी तक हो गया, अभी अब आगे कुछ बताएंगे। तो ये कथन करने के बाद अभी जघन्य और उत्कृष्ट स्थान में कितने जीव है उसकी बात यहाँ सिद्ध करेंगे। यथा यवमध्य से अधस्तन नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन कर और विरलित राशि के प्रत्येक एक को दूना कर जघन्य परिता संख्यात का अर्ध भाग उत्पन्न होता है। यानी वो अन्य अन्य व्यस्त राशि निकाली उन्होंने, हमने भी एक और पांच निकाला था ना, तो उसमें भी एक का क्या विरोधन करना, एक ही रहेगा। और उसको दो गुना करेंगे तो क्या होगा, दो हो जाएगी, तो जगन्य परिता संख्या चार का आधा भाग आ जाएगा। पुनः इस अन्योन्याभ्यस्य राशि द्वारा यव मध्य के जीवों के भाजित करने पर जो लब्ध आता है वह एक कम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जघन्य परिता संख्यात को परस्पर गुणित कर जो लब्ध आवे उससे दूना होता है। यही जघन्य स्थान के जीवों का प्रमाण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ी लगती है? इस अन्योन्याभ्यस्य राशि द्वारा यव मध्य के जीवों को भाजित करने पर जो लब्ध आता है वह एक कम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जघन्य परिता संख्यात को परस्पर गुणित कर जो लब्ध आवे उससे दूना होता है। ऊपर क्या है? तम जहां जव मध्यानो हेठिम नाना गुणहानि सलागावो विरलीय विगम करिय। विगम क्या होता है? द्विकम होगा, दूना करके। अन्योन्याभ्यस्य कदे यानी अन्योन्याभ्यस्य राशि करने पर जघन्य परिता संख्ये जस अद्धम उपजय, जघन्य परिता संख्या का आधा प्रमाण मिलता है। अच्छा अच्छा, ख्याल में आया मुझे क्या। पुनो एदेन अन्योन्याभ्यस्य राशिना जव मध्य जीवे ओवट्ठी देशु ऋण उपकस्य संख्ये जमित जघन्य परिता संख्ये जानी अन्योन्याभ्यस्थानि कादुन दुगुणमित्त लब्ध प्रमाणम होवि। एदं चैव जघन्य ठाण जीव प्रमाणम इति घेतव्यम्। यहाँ क्या कहते हैं, फिर मैं पढ़ती हूँ यथा से। यव मध्य से अधस्तन नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन कर और विरलित राशि के प्रत्येक एक को गुणा कर परस्पर गुणा करने पर जघन्य परिता संख्या का अर्ध भाग उत्पन्न होता है। इस अन्योन्याभ्यस्य राशि द्वारा यव मध्य के जीवों के भाजित करने पर जो लब्ध आता है यानी हमने अगर उस 64 को 2 से भाग दिया,
ये तो ऊपर जो बात की है वो तो अन्योन्याभ्यस्य राशि है ना।
यहाँ पर भी वही है ना।
हाँ।
क्या किया उन्होंने, देखो फिर से
यव मध्य
अधस्तन नाना गुणानी शलाकाओं का विरलन करना। हाँ।
और विरलन राशि प्रत्येक
प्रत्येक के दो गुणा करना।
हाँ।
और उसको आपस में गुणा करना।
हाँ, इसका अर्थ
क्या, अन्योन्याभ्यस्य राशि। ऊपर भी वही बात की, यानी नीचे की अन्योन्याभ्यस्य राशि से यव मध्य के जीवों को भाग लेना। देखो यव मध्य के जीव जो कोई संख्या है यहाँ पर, यव मध्य के जीवों की जितनी संख्या है उसका आधा उसका आधा उसका आधा होगी। ठीक है, यहाँ तीन अगर नाना गुणानी मानते तो तीन बार दो गुना अभी पहले की संदृष्टि भूल जाए, तीन बार दो गुना हो जाएगी, यानी कितने हो गए, आठ हो जाएगी ना। तो उस आठ से इस संख्या को भाग देंगे तो हमें जघन्य की राशि मिलेगी। तो कहते अन्योन्याभ्यस्य राशि के द्वारा यव मध्य के जीवों को भाजित करने पर जो लब्ध आता है वह एक कम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जघन्य परिता संख्यात को परस्पर गुणित करने पर जो लब्ध आवे उससे दूना होता है।
तो यहाँ पे एक चीज फिगर बता दिया है, एक कम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जघन्य परिता संख्यात को परस्पर गुणित करने पर जो लब्ध आवे उससे दूना होता है। कैसे फिक्स नंबर बता दिया उन्होंने। एकम वस्तु संख्या तीनटू जगत या परिसर संख्या इंटू टू कितना होगा ऐसा बता रहे हैं।
एक कम उत्कृष्ट जघन्य परिता संख्यात प्रमाण उत्कृष्ट संख्या प्रमाण जघन्य परिता संख्यात को परस्पर गुणित कर जो लब्ध आवे
उसका दुना हो जाता है,
उससे दुगुना आता। आगे देखेंगे हम क्या है? हमने अगर दो मान लिया और दो से हमने अगर 64 को भाग दिया तो 32 आते थे।
हाँ।
और एक कम उत्कृष्ट संख्या प्रमाण जगन्य परिता संख्या तो परस्पर गुणे करने पर 64 आते थे।
ये छोटी संख्या है उसमें
नहीं, 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 वो नहीं बैठेगा छोटी हाँ। संख्या में हम संदृष्टि नहीं बना सकते उसमें।
हाँ।
अभी तो ऐसे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ क्या किया, अधस्थन नाना गुणानी सलाकाओं को विरलन किया, हर एक के प्रति दो लिखा, आपस में दो 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 का गुणाकार किया, तो उसी को अन्योन्य बेस राशि कहते हैं। अब इस अन्योन्य बेस राशि का जो भाग है वो यमो मध्य के जीवों को देना, वहाँ जो लब्ध आता है वो क्या है, जघन्य स्थान के जीवों का प्रमाण है। अभी वो बीच वाला दोना होता है वो छोड़ दो, वो क्या है जगन्य स्थान के जीवों का
प्रमाण।
हमने अभी देखा है ना, यहाँ जितने जीव हो गए अभी हम आधा आधा तीन बार आधा आधा हुआ तो कितना हो सकेगा,
आठवां भाग।
इसी तरह से जैसे हमने यहाँ 64 मान लिया, 64 का आधा हुआ 32, 32 का आधा हुआ 16, 16 का आधा हुआ 8, ये दुगुना दुगुना हुआ ना, यहाँ आधा आधा किया हमने तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग दिया, वही तो हुई ना बात, कितनी बार आधा आधा हुआ तो उसी को हम अन्योन्य अभ्यास रहते कहेंगे, दो गुना दो तीन बार, तो उससे हम भाग देंगे तो डायरेक्ट जघन्य स्थान के जीवों का प्रमाण मिल जाएगा। अब उत्कृष्ट स्थान के जीवों के प्रमाण को लाने पर वहां सर्वप्रथम पूर्वोक्त विरलन के दो अंकों के प्रति प्राप्त अर्धच्छेदों से हीन यवमध्य के अर्धच्छेद प्रमाण उपरिम नाना गुणानी शलाकाओं को ग्रहण कर उनकी अन्योन्य बेस राशि से पूर्वोक्त प्रमाण यवमध्य संबंधी जीवों के भाजित करने पर जघन्य परिता संख्या के वर्ग के चौथे भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थान संबंधी जीवों का प्रमाण आता है। और यहाँ कितना आया था, एक कम उत्कृष्ट संख्या प्रमाण जघन्य परिता संख्या को परस्पर गुणित करने पर जो लब्ध आवे उससे दूना होता है ऐसा लिखा था।
यहाँ पे जघन्य परिता संख्या क्या,
अब यहाँ कहते कि जघन्य परिता संख्या का वर्ग,
हाँ।
यानी जघन्य परिता संख्या गुणा कर जघन्य परिता संख्या डिवाइडेड बाय 4, यानी जप इंटू जप डिवाइडेड बाय 4। और वहां कैसे लिखा था,
जप
जप कितने बार उत्कृष्ट संख्या बार लिखना,
हाँ।
आपस में गुणा करना और उसका आधार लेना,
हाँ। यहाँ पे नीचे से ऊपर के जीवों का प्रमाण बहुत ज्यादा है,
कम है,
नहीं जप इंटू जप लिया ना,
हाँ, और वहाँ जप इंटू जप उत्कृष्ट संख्या हाँ। प्रमाण लिया और उसका आधा कर दिया, ऊपर हाँ। की लिखा था ना जन परिता संख्या जो अद्दम उपज गई, अभी हम आगे आते हैं यहाँ 137 पृष्ठ पर तीसरी लाइन। और यदि तीन अंक कम विरलन की जितनी संख्या है तत्प्रमाण उपरी नाना गुणानी शलाका है ऐसा ग्रहण करते हैं, पहले हमने दो अंक कम करके देखा था, अब उसमें तीन अंक कम करेंगे तो उनकी अन्य व्यस्त राशि द्वारा यौमध्य के जीवों के भाजित करने पर जघन्य परिता संख्या के घन के आठवें भाग से मान, और एक जघन्य परिता संख्या बढ़ा देना भी, और नीचे चार के बदले आठ करना, यानी जप इंटू जप इंटू जप तीन बार करना और नीचे आठ करना। इस प्रकार विरलन के तत्प्रायोग्य संख्या अंकों के प्रति प्राप्त अर्धच्छेदों से ही यौमध्य के अर्धच्छेद प्रमाण उपरिम नाना गुणा निशलाकाओं के होने तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार इन विकल्पों में, यानी अलग अलग विकल्प मन में धरकर हम उसका गणित कर रहे हैं, जिनेंद्र देव ने जैसा देखा हो उसके अनुसार उत्कृष्ट स्थान के जीवों का प्रमाण आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। पहले क्या बताया, जप को असंख्यात बार उत्कृष्ट संख्यात बार लिखो, उसका आधा करो, उसको भी हम आवली का असंख्यात भाग बांटेंगे। अब यहाँ कहेंगे कि जप को उसका वर्ग करो, उसका चौथा भाग करो, तो भी उसको आवली का असंख्यात भाग करो, उसका घन करके आठ से डिवाइड करो, तो भी उसका आवली। तो यथा योग्य जिनेन्द्र भगवान ने जो देखा है उसको समझ। यहाँ पर प्ररूपणा प्रमाण और अल्प बहुत्व इन तीन अनियोग द्वारों के आलंबन द्वारा
ऊपर कितना ही बाकी है ना?
ओ रह गया क्या? हाँ रह गया, मैं पढ़ रही हूँ। यानी उत्कृष्ट स्थान के जीवन का प्रमाण कितना है, तो आवली के असंख्या से भाग करना, यहाँ तक पढ़ा था। और इसीलिए उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में दो जीव है, इस प्रकार इस सूत्र का भी संदृष्टि का प्रमाण करके व्याख्यान किया। शंकर ने पूछा था, संदृष्टि बनाकर बताई थी कि नीचे कितने जीव है
और
ऊपर कितने, नीचे कितने देखे थे, नीचे ज्यादा है कि ऊपर ज्यादा,
नीचे ज्यादा है, नीचे ज्यादा है,
ऊपर ऊपर गुनाहानिया ज्यादा है, पर जीव नीचे ज्यादा होंगे,
नीचे ज्यादा है,
नीचे चार और ऊपर दो लिखे थे उन्होंने। तो कहते वहाँ जो दो और चार लिखा था, तो शंकाकार ने पूछा था एक्चुअली वहाँ दो और चार जीव हो गए, आप अवली के असंख्या तो भाग क्यों कहते हैं, ये उनका प्रश्न था। तो कहते वो जो बताया था वो संदृष्टि है, निकालो। हाँ गुनाहानी असंख्यात वहाँ वो कहते कि वो संदृष्टि बनाई थी। कहाँ थी संदृष्टि, 126 पर था ना, हाँ ये वो 279 में वो संदृष्टि का प्रमाण चार का और ऊपर दो जीव ऐसा संदृष्टि लिखा था। तो शंकाकार ने पूछा था ये संदृष्टि रूप से नहीं होकर वास्तव में इसी प्रकार ऐसा मानने में क्या दोष है, उसकी बात ये सब चली होती है। ये पेज 126 से ये बात आई थी, ख्याल में आई ना, अभी आगे बढ़ेंगे हम, मैं इसको फिर पढ़ती हूँ। इसलिए उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में दो जीव है, इस प्रकार इस सूत्र का भी संदृष्टि का प्रमाण करके, ये संदृष्टि है और यथार्थ नहीं है, व्याख्यान किया। इसलिए कुछ भी विरुद्ध नहीं है, अतः यौमध्य के जीवों के जितने अर्धच्छेद होते हैं उनके असंख्यात भाग प्रमाण यौमध्य के अधस्तन गुणहानी स्थानांतर होते हैं, और उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण यौमध्य के उपरिम गुणहानी स्थानांतर होते हैं, यह सिद्ध हुआ। यहाँ पर प्ररूपणा प्रमाण अल्प बहुत्व इन तीन अनियोग द्वारों के आलंबन द्वारा नाना और एक गुणवृद्धि शलाका, गुणहानि को गुणवृद्धि कहें, नीचे से यौमध्य तक जाते तो गुणवृद्धि कहेंगे, ऊपर गुणहानि कहेंगे, नीचे भी गुणहानि कभी कभी कह देते हैं, इससे उसको ही दोष नहीं है, क्योंकि वो तो एक कथन पद्धति। तो नाना गुणहानि और एक गुणहानि, तो कहते हैं कि उसकी प्ररूपणा करना प्रमाण बताना अल्प बहुत, तो तो नाना और एक गुणबुद्धि शलाकाओं और एक गुणहानी शलाकाओं का अनुगम करना चाहिए। गुणहानी में भी नाना और एक लगाना और गुणबुद्धि में भी नाना और एक लगाना। उनमें से प्ररूपणा की अपेक्षा एक जीव द्विगुण हानि स्थानांतर और नाना जीव द्विगुण हानि स्थानांतर शलाकाय है बता दिया, वो हो गई प्ररूपणा। प्रमाण ये दूसरा नियोग द्वार। तो कहते एक गुणवृद्धि और गुणहानि स्थानांतर असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि हमने देखा था ना असंख्यात लोक प्रमाण जाने पर एक बढ़ा, फिर और असंख्यात लोक प्रमाण जाने दो बढ़े, फिर चार बढ़े, इसे करते करते दो गुना हो गए। आवली का असंख्यात भाग दो गुना हुआ था तो उसमें कितने स्थान गए?
असंख्यात लोक।
असंख्यात तो एक गुणहानि जिसको हम कहते हैं वो कितनी है? तो असंख्यात लोक। तथा नाना गुणहानि स्थानांतर शलाकाएं, शलाकाएं का अर्थ होता है एक गुणहानि में तो उसका आयाम बताते हैं और नाना गुणहानियों में ऐसी गुणहानियां कितनी होती है टोटल कसाई के उदय स्थानों में, तो कहते हैं आवली के असंख्या से बात करना। तो टोटल स्थान कितने होंगे मेरा प्रश्न?
आवली के असंख्या के बाद इंटू असंख्या लोग,
नाना गुणहानी मल्टीप्लाइड बाय एक गुणहानी इज इक्वल टू टोटल स्थान। नहीं समझ, जैसे हम कर्मों के बंध में क्या देखते थे, 48 समय का बंध हुआ तो उसमें 6 गुणहानी होगी, एक एक गुणहानी 8 की होगी, तो टोटल कितने हो गए वहाँ नीचे? 48। हमने वहाँ हिसाब किया था वैसे ही, हाँ एक गुणहानी कितनी असंख्यात लोग की, नाना गुणहानियाँ कितनी है टोटल?
आवली का
तो एक गुणहानी में इतने स्थान, तो नाना गुणहानी सब टोटल उसमें कितने हो गए?
असंख्यात
एक में इतने, तो आवली के असंख्यात विभाग में कितने? तो असंख्यात लोक मल्टीप्लाइड बाय आवली का असंख्यात। यहाँ कुछ अलग बात करें, अल्प बहुत्व आवली के लिए दो, यानी ये असंख्यात लोक हो गए क्या? गुणहानि। और ये कितने हो गए? आवली के असंख्यात विभाग। अब अल्प बहुत तीसरा नियोग द्वार, नाना गुणानी स्थानांतर शलाकाएं सबसे थोड़ी
आवली के असंख्या,
ये आवली के असंख्या से बात करना है। उनसे एक द्विगुण वृद्धि और द्विगुण हानि स्थानांतर शलाका असंख्या, दोनों समान है ना, असंख्यात गुणी है तो असंख्यात लोक प्रमाण है। उसका गुणकार क्या है? वो भी असंख्यात लोक ही है। इस प्रकार परम्परोपनिधा के संबंध से, परम्परोपनिधा समझते हैं, अनंतर उपनिधा का अर्थ है एक एक के बाद एक एक स्थान की चर्चा करें और इसमें जंपिंग यानी क्या गुणानी गुणानी की बात करें, दो गुना चार गुना आठ गुना सोलह गुना, उसको कहेंगे परम्परा निधा उपनिधा। और एक स्थान से दूसरा स्थान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मिले असंख्यात लोग जाने पर एक बढ़ा, फिर और एक बढ़ा, फिर और एक बढ़ा, तो उसको कहेंगे अनंतर उपनिधा और ये परंपरा उपनिधान। इस प्रकार परम्परोपनिधा के संबंध से यव मध्य से अधस्तन और उपरिम नाना गुणहानी शलाकाओं की संख्या का अवधारण कर, यानी उसको जानकर। अब यह यव मध्य त्रसजीव विषय कहाँ है इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। एवं पदुपणम ससाणम जव मध्यम, इस प्रकार त्रस जीवों के कषाय उदय स्थान संबंधी यव मध्य उत्पन्न हो जाता है। जिस यव मध्य का पहले कथन कर आए हैं उनका त्रस जीवों को अधिकृत कर पदुपन्नम यानी प्रत्युत्पन्न हुए ना, उत्पन्न हुए अर्थात कथन किया। पदुपन्नम प्ररूपणम होता है क्या? अच्छा, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। शंका, एकेंद्रीय जीव में यह यव मध्य प्ररूपणा क्यों नहीं होती? नहीं क्योंकि वहाँ स्थावरों के योग्य कषाय उदय स्थानों में एक एक कषाय उदय स्थान में उनकी संख्या अनंत होती है। क्योंकि अनंत जीव ना स्थावरों के योग्य जो कषाय उदय स्थान है उस एक एक स्थान में अनंत जीव है, इसलिए उनके यवमध्य की रचना का अवस्थान विसदृश रूप से देखा जाता है। इसलिए जहाँ पर जीवों से रहित और जीवों से युक्त स्थान संभव है वहीं त्रस जीव विषय के यवमध्य उत्पन्न हुआ है यह सुसंबद्ध कहा है। यहाँ किसी स्थान पर कभी है कभी नहीं है, परंतु अतीत काल की अपेक्षा वहाँ घटित करके दिखाया उन्होंने। अब जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों से
दो लाइन बाकी है ऊपर की,
अथवा पूर्व सूत्र द्वारा ये पट्टी कहाँ गई मेरी, पूर्व सूत्र द्वारा यवमध्य से अधस्तन और उपरिम नाना गुणानी शलाकाओं के प्रमाण का निर्णय करके उस द्वारा जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों का प्रमाण कहा गया। ये क्या कह के आए हैं उसकी बात से दोबारा उन्होंने रिपीट किया। अब जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों से
कहते हम लोग ने यवमध्य में जो जीव का प्रमाण तो अवली की असंख्या के बाद प्रमाण और टोटल स्थान है असंख्या लोक प्रमाण, तो असंख्या लोक इंटू अवली का असंख्या
सभी युक्त नहीं होते, ये तो बात हम देख के आए ना।
नहीं बराबर है, पर यहाँ पे जीवों की संख्या तो अतीत काल की अपेक्षा अनंत हो जाएगी।
नहीं, किसी एक समय में अधिक से अधिक जीव कितने हैं तो अवली की संख्या के
किसी एक समय
पूरे भूतकाल में कभी भी घटित हुआ हो तो वो उसको ले लेंगे। यही तो हम देखे ना उसकी बार बार चर्चा की, क्योंकि एक समय में अगर सभी त्रसों को एक एक स्थान में भेज दो तो भी सभी स्थान कवर नहीं होते, एक एक स्थान में एक एक भी जीव रखेंगे तो जितने त्रस जीव है उतने स्थान ऑक्युपाई
हो जाएंगे।
वो कितने हो गए जगत प्रत्यर का असंख्यात और ये कितने हैं स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। तो वो जो आप असंख्यात लोक इंडो अवली का वो मत करो, वो स्थानों की संख्या है जीवों की नहीं, क्योंकि कितने स्थान जीवन से रिक्त होगी ना, जब कहीं आवली की असंख्या से बात प्रमाण जीव है तो कितने स्थान जीवन से रिक्त रहेंगे ऊपर। अब जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों से यवमध्य के जीवों के प्रमाण को सिद्ध करने के लिए सूत्र आया है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, यथा यह अनंतर कहा गया जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों का प्रमाण क्रम से अधस्तन और उपरिम नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से पदुपन्नम अर्थात गुणित होकर त्रस जीवों का यवमध्य होता है। गुणित होकर यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि से प्रत्युत्पन्न ऐसा लेना चाहिए, इन्हें क्या कहना चाहते हैं, जितने जघन्य में जीव है उसको नीचे के अदर गुणहानियों के गुणा करेंगे तो यवमध्य के जीव आ जाएगा। हमने कैसे निकाला था, यवमध्य को भाग दिया था और जघन्य का प्रमाण निकाला। जघन्य और उत्कृष्ट स्थान के जीवों के प्रमाण को क्रम से दो स्थानों में स्थापित कर वहां जघन्य स्थान के जीवों के प्रमाण को अधस्थन नाना गुणहानी शलाकाओं का जो प्रमाण है उतनी बार द्विगुण गुणकार से गुणित करने का, अपनी भाषा में नीचे के अन्य व्यस्त राशि से गुणा करने का,
डबल डबल होते हैं
क्योंकि नाना गुणानी बार दो लिखते हैं उससे गुणा करते हैं आपस में। यहाँ वही बात बताए, जघन्य का प्रमाण रखो और जितनी नाना गुणानी आए नीचे की उतनी बार उसको दो गुना दो गुना दो गुना करो, तथा उपरिम नाना गुणानी शलाकाओं का जो प्रमाण है उतनी बार उत्कृष्ट स्थान के जीवों के प्रमाण को द्विगुण गुणकार से गुणित करने पर यवमध्य के जीवों का प्रमाण उत्पन्न होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। पहले हमने यवमध्य को उसके जीवों को अन्य व्यस्त राशि से भाग देकर नीचे के रूपरेखा स्थान का जीवों का प्रमाण निकाला था, अब यह उल्टा करें, जगन्य की संख्या मालूम है, उसको अन्य बेस्तर राशि से नीचे की अन्य बेस्तर राशि, अथवा यव मध्य के अर्धच्छेदों के इस प्रमाण को न्यूनाधिकता से रहित रूप से ग्रहण कर और उसका विरलन कर तथा विरलन के प्रत्येक एक को गुणा कर परस्पर गुणा करने पर यव मध्य स्थान के जीवों का प्रमाण उत्पन्न होता है। ये तो डायरेक्ट ही है ना, क्या कहना चाहते हैं? किसी संख्या के चार के अर्धच्छेद कितने हैं?
दो।
तो दो बार दो को गुणा करेंगे तो क्या होगा? चार आएगा। हमने 64 मान लिए थे, उसके अर्धच्छेद तीन थे, छह थे। तीन बार दो 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 71 हमने किया था, तो छह बार दो को आपस में गुणा करेंगे तो 64 आएगा। अर्धच्छेद करो और उतनी बार दो गुणा करो, बात एक ही है ना। यही कहते हैं कि यव मध्य के अर्धच्छेदों के इस प्रमाण को न्यूनाधिकता से रहित रूप से ग्रहण करो, यानी उसके कुछ कम मत करो, कुछ अधिक मत करो, जितना है उतना ले लो और उसका विरलन कर तथा विरलन के प्रत्येक एक को गुणा कर परस्पर गुणा करने पर यव मध्य स्थान के जीवों का प्रमाण उत्पन्न होता है। अर्धच्छेद का कथन ही इतना है, उसको उतनी बार हमने आधा आधा
किया,
अब उसको उतनी बार दो गुना करो तो वही संख्या आने वाली है। क्योंकि पदुपन्न शब्द को गुणकार अर्थ में रूढ़ रूप से यहाँ ग्रहण किए हैं, पदुपन्न का अर्थ गुणकार लिया हमने। इस प्रकार ऊपर लिखा है पदुपन्न सदस्य गुणगार पज्जायते रूढ़स्य यह गणादो, इस प्रकार अनंत रोपनिधा और परंपरोपनिधा के भेद रूप श्रेणी प्ररूपणा समाप्त हुई। श्रेणी यानी पंक्ति, तो हमने एक एक स्थान की बात कह ली, कह दी पहले, और फिर गुणानि गुणानि की भी बात कर दी, दो गुना वृद्धि का भी और हानि का भी। अब इसी सूत्र प्रबंध द्वारा सूचित हुए अवहार और भागा भाग का जानकर कथन करना चाहिए, यानी उसका प्रमाण निकालने के लिए कौन से भागार से भाग देंगे इसको अवहार कहेंगे, और भागा भाग यानी कितने भाग प्रमाण की है उसको भागा भाग कहेंगे। उसके बाद अल्पभूतव है, उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे जघन्य कषाय उदय स्थान में जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है? अवली के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार है, तो गुणकार बराबर करना। अधस्तन नाना गुणहानी शलाकाओं से हीन, उपरिम नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्य व्यस्त राशि गुणकार है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो हमने जैसे अपने संदृष्टि बनाई, हमने बीच वाले 64 मान लिए, नीचे हमने एक गुणहानि मानी थी और ऊपर पांच गुणहानि, क्योंकि इसके गुणा इसके अर्धच्छेद कितने थे तो 6 होते, दो और चार करने से वो संख्यात गुना होता था, वो घटित नहीं हुआ था अपनी, तो हमने नीचे एक और ऊपर पांच माने। अब नीचे एक गुणहानि है यानी 64 से नीचे कितने हो गए? यहाँ 32 हो गए, आधा हो
गया,
और ऊपर पांच गुणहानि है, पांच गुणाने पांच बार आपस में गुना करो दो को और उससे इसको भाग दो तो ऊपर की संख्या दो आएगी, ऊपर दो जीव नीचे कितने 32
है।
तो ये पांच में से एक माइनस करो, ऊपर की गुनाहनियां पांच है, नीचे की गुनाहनियां एक है, पांच में से एक जाने पर चार रहेगी, तो चार जो गुनाहनियों का डिफरेंस चार है, तो चार बार दो को आपस में गुना करो
और दो को गुना करो,
दो गुनी दो चार नहीं सोलह, तो दो को सोलह गुना करेंगे, गुणकार का प्रमाण क्या है तो सोलह, दो से 32 कैसे क्या, ऊपर की गुनहानी माइनस नीचे की गुनहानी जो संख्या आएगी उसको अन्योन्य बस से राशि किया, यानी उतनी बार दो लिख के गुणा किया, वो गुणकार होगा ऊपर और नीचे के बीच वाला। दो से 16 गुना हो गया 32। उनसे यानी अभी हमने जघन्य स्थान की थी बात चल रही, मिला ना आपको, उनसे यवोमध्य के जीव संख्यात गुणे हैं। हमारे गणित में यहाँ 32 है तो ऊपर 64 है, ये हमने मान लिए, तो ये उससे संख्यात गुणा हो गया। गुणकार क्या है, जघन्य परिता संख्यात का अर्धभाग प्रमाण, चतुर्थ भाग प्रमाण, अष्टम भाग प्रमाण अथवा तत्प्रायोज्य संख्यात अंक प्रमाण है, उप्रयाण हुआ प्रमाण है, हमने अलग अलग मानकर उसका गणित निकाला था। अभी हमारे यहाँ हमने दो माना, हमने जघन्य परिता संख्या चार माना था, अभी उसका आधा है ने दो, तो 32 का 64 हो गया है ना। यह किस प्रमाण से जाना जाता है, जघन्य स्थान से ऊपर एक कम जघन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों से लेकर तत्प्रायोग्य संख्या अंक प्रमाण, यवमध्य से अधस्तन नाना गुणहानी शलाकाएं जितनी जिनेन्द्र देव ने देखी हो उस रूप से ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा परम गुरु का उपदेश है। यहाँ क्या कहते हैं, ये जो हमने देखा था जघन्य परिता संख्या के जितने अर्धच्छेद है, यदि हम नीचे दो गुणहानियां मानते हैं तो ऊपर संख्यात गुणा हो जाता है, तो अर्धच्छेदों से एक कम कर दो, दो कम कर दो, तीन कम कर दो, अर्धच्छेदों में से उतनी गुणहानियां नीचे मान लो, ये हमने यहाँ पर देखा था पहले ही विस्तार से चर्चा। उनसे यवमध्य के जीव असंख्यात गुणे, पहले क्या कहा था, जघन्य स्थान से यवमध्य के जीव संख्यात गुणे, ये कुछ रह गया, हाँ हाँ देखो पहला क्या लिखा, उत्कृष्ट सबसे कम है, जघन्य कषाय उदय स्थान में असंख्यात गुणे हैं, उनसे यवमध्य के जीव संख्यात गुणे, यहाँ तो आ गए ना। यानी उनसे यवमध्य के जीव, उनसे यानी यहाँ तो उत्कृष्ट स्थान से लेना चाहिए,
264 तो आपने देखा है वो।
नहीं 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 नहीं, ये बात उन्होंने कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर का पढ़ेंगे 140 पेज पर प्राकृत की सेकंड लाइन, ये परम गुरु ऐसा वो ऐसा दो ते हो गया, जव मज्जा दो हेठिम जीव असंख्यात गुणे, यव मध्य के जीव नहीं, यव मध्य के नीचे के जीव, यव मध्य से अधस्तन कहो हेठिम यानी नीचे के जीव, यानी यव मध्य से लेकर नीचे तक के सभी जीव, देखो कितने हो गए, अभी हमने 32 32, बहुत सारे स्थान तो 32 32 हो गए, फिर एक बढ़ेगा 33 होगा, फिर और बहुत सारे जाके उतना उतना फिर 64 होगा। वो सब जीवों का टोटल लेना है, खाली 32 और 64 नहीं लेना है।
तो ज्योमेट्री के नीचे के सब टोटल
सब स्थानों के सब जीव, ज्योमेट्री के नीचे के
स्थानों के टोटल जीव,
स्थानों के सब जीव। सभी स्थानों को ले लेना, ऊपर लिखा ना जब मध्यादो हेच्छी मजीवा, कितने तो असंख्यात गुण, गुणकार क्या है, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुणकार है, यानी कुछ कम डेढ़ गुणानी स्थानांतर प्रमाण गुणकार है, यह उक्त कथन का तात्पर्य।
प्रथम निश्चक इनको डेढ़ गुणा नहीं प्रमाण जो करते थे तो उसका प्रथम निश्चक से युवक की संख्या आती थी वही है जी।
पर यहाँ गुणानी स्थानांतर यहाँ का गुणानी स्थानांतर असंख्यात लोग हैं, किंचित दोनों डिवड गुणानी स्थानांतरम विधि उत्तम, तो यहाँ गुणहानी कौन सी अनुभव की लेनी है, वही लेनी पड़ेगी।
तो अनंत पे जाएगी ना गुणहानी।
हाँ अनुभव की अनंत होती है। ठीक है हम देखेंगे आपको। तो गुणगारो आवलिया संख्यति भागो किंचून दिवड्डी गुणहानि स्थानांतरम इति उत्तम होई। उनसे
नहीं यहाँ पे गुणानि स्थानांतर का प्रमाण तो हमने असंख्यात लोक प्रमाण देखा था ना, एक गुणानि का कायम कितना है असंख्यात लोक प्रमाण देखा था, तो डेढ़ गुणा असंख्यात लोक इंटू डेढ़ तो ये टोटल जीव की संख्या हो जाएगी ना,
जीवों की। देखो देखो यो में देखिए जीव असंख्यात गुण है, गुणकार क्या है, नीचे के स्थानों के सब जीवों के आवली के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार है, क्योंकि उनके स्थान ही कितने हो गए ना आवली के असंख्यात भाग, ये सॉरी असंख्यात
लोग का मन
होता है। हाँ तो वही गुणकार का प्रमाण आवली का असंख्यात प्रभाव कह रहे
या यौमध्य प्लस नीचे के स्थानों के सभी जीव मिलके
नहीं यौमध्य से उन उसके नीचे के जीव जो मैं देखे ले लिए उन्होंने, अब उससे नीचे के उसको छोड़कर नीचे के अब उसके आगे पड़े ना तो ख्याल है उनसे, अभी जो नीचे के है उनसे यो मध्य से उपरीम जीव विशेष
है।
यहाँ पर कारण का कथन सुगम है, ये समझ में ना, पहले जगन्य से उत्कृष्ट उसमें तो गुण का था, उत्कृष्ट जितने थे उससे असंख्यात गुणा वाला था,
पहले उत्कृष्ट
ऊपर के सभी स्थानों की टोटल जीवों की संख्या लेनी है,
पहले नंबर पे उत्कृष्ट स्थान के
पहले पर उत्कृष्ट
जगन्य स्थान
असंख्यात गुणा जगन्य के स्थान
पीछे यौ मध्य के जीव लिए
वो संख्यात गुणा यौ मध्य के
पीछे उसके नीचे
के सभी टोटल जीव
उससे ऊपर के टोटल जीव लिए
विशेष
और उससे पूरा टोटल विशेष।
अभी वहाँ कहाँ बताया वो तो आगे कहेंगे, यहाँ पर कारण का कथन सुगम है, उनसे सब स्थानों के जीव विशेष है। आप आगे बढ़ते तो बाकी लोगों को तकलीफ होती है। छह हो गए ना टोटल।
हाँ।
देखो पहला है उत्कृष्ट स्थान, दूसरा है जगन्य, तीसरा है यव मध्य का, चौथा है यव मध्य के नीचे के जीव, पांचवा है यव मध्य के ऊपर के जीव। उन सब स्थानों में जीव विशेष अधिक है, उनसे सब स्थानों में ये टोटल स्थान ले लिया, क्योंकि इनमें अधर संस्थानों के जीवों का प्रवेश देखा जाता है। पांचवे स्थान पर सभी ऊपरी वाले ले लिए, अब उसमें अधर संसारे इंक्लूड कर गए। इस प्रकार अल्प बहुत्व का कथन करने पर कषाय उदय स्थानों में ओघ से रस जीवों से रहित और सहित स्थानों की प्ररूपणा से अनुगत यव मध्य प्ररूपणा समाप्त होती है, यानी ये सभी स्थानों में एट अ टाइम जीव कभी भी नहीं पाए जाएंगे। अतीत काल की अपेक्षा जब कभी किसी एक समय में मैक्सिमम जीवों की संख्या होती है उसका प्रमाण यहाँ स्थापित करने पर यव मध्य होती है, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। आगे नरकादि गतियों में से प्रत्येक गति को विवक्षित कर त्रस जीवों की आदेश प्ररूपणा भी आगमानुसार जान लेनी चाहिए। ऐसा सुप्त विहासा, यह गाथा सूत्र की अर्थ विभाषा है। सातवीं गाथा सूत्र के पूर्वार्ध की यह अर्थ विभाषा की यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये सातवीं गाथा के अर्ध एक लाइन की यह अपनी बात चल रही थी, उसमें अध्यास्थान और कषाय उदय स्थान की बात चल रही थी ना, अपनी निकालो सातवीं गाथा कहाँ से चल रहा है। यहाँ कौन सी शास्त्रियों पर कौन सी थी, पांचवी बात है यहाँ पर मेरी
108 पे छठी गाथा समाप्त हुई, 108
पर 108 पर हाँ। अब सातवीं में क्या बताया था उन्होंने, कितनी उपयोग वर्गणाओं से कौन स्थान अविरहित पाया जाता है कौन स्थान विरहित पाया जाता है, तो उसमें दो प्रकार की उपयोग वर्गणा बताई थी, एक तो कषाय उदय स्थान और उपयोग अध्यास्थान। पहले उपयोग अध्यास्थान को बताया था, वो स्थान कितने होते तो अंतर्मूर्त प्रमाण होते हैं, और उसमें उन्होंने जीवों की संख्या कितनी होती है तो उसकी बात वहाँ असंख्या जगत शून्य प्रमाण वगैरह वगैरह बात बताई थी। उसके बाद अभी हमने कषाय उदय स्थान देखे, कषाय उदय स्थान में एक जीव भी घटित करेंगे तो सभी कवर नहीं होगे भी, तो इसलिए अतीत काल की अपेक्षा जिस किसी समय में मैक्सिमम थे उसकी अपेक्षा यव मध्य बताया। ये अभी एक लाइन का अर्थ हुआ। अब आगे सप्तमीय गाहाय परमस्य अद्धस्य अर्थ विभाषा समत्ता भवति, इस प्रकार सातवीं गाथा के प्रथम अर्धभाग की अर्थ विभाषा समाप्त होती है, यह सुगम है। एतो विधियद्धस्य अर्थ विभाषा कायोगा, अब आगे दूसरे अर्थभाग की अर्थ विभाषा करनी चाहिए, यह प्रतिज्ञा वाक्य सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र वचन भी सुगम है। पढ़म समयो व जुत्ते हिम चरिम समये च बोद्धवास्ति एथ तिन्नी सेरियो, प्रथमादि श्रेणी या प्रथमादि कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के द्वारा और अंतमादि का श्रेणी या अंतिमादि कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के द्वारा अल्प बहुत्व जानना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति में तीन श्रेणियां कही गई। गाथा के इस उत्तरार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने के लिए यहाँ पर अल्प बहुत्व से संबंध रखने वाली तीन श्रेणियां जाननी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य। शंका, गाथा का यह उत्तरार्ध तीन प्रकार की श्रेणियों से संबंध रखने वाले अल्प बहुत्व के कथन में कैसे प्रतिबद्ध है। समाधान, कहते यथा इसमें आया हुआ समय शब्द कालवाचक नहीं है किंतु व्यवस्थावाचक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ है ना, परम समय वो जुटते ही चरिम समय च बुद्ध हुआ। इसलिए परम समय वो जुटते ही ऐसा कहने पर प्रथमादि श्रेणी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम कषाय आदि रूप व्यवस्था से परिणत हुए जीवों के द्वारा एक कल्प बहुत्व श्रेणी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रकृत में सूत्रार्थ का अवलंबन दिया है। इसी प्रकार चरिम समय च बोध हुआ, इस प्रकार इस वचन द्वारा भी चरमादि का श्रेणी का ग्रहण करना चाहिए। चरम आदि यानी वहां से शुरू करके फिर बताएं उत्कृष्टता, क्योंकि अंतिम कषाय आदि रूप व्यवस्था में अन्य अल्प बहुत्व श्रेणी जाननी चाहिए।
अंतिम कषाय में आदि रूप कैसे ले सकते,
कथन में कर सकते कि नहीं? जैसे हम कहेंगे महावीर से, नहीं महावीर से पुरुषोत्तम तक कहो तो क्या कहेंगे? चरम से आदि तक, और आदिनाथ से अनुपूर्वी। यथा ये दोनों ही श्रेणियां दैशामर्शक भाव से प्रवृत्त हुई है मेरा, इसलिए द्वितीय आदि का श्रेणी भी यहाँ पर अंतर्भूत है, ऐसे उसे भी ग्रहण करना चाहिए। द्वितीय आदि यानी दूसरे स्थान से शुरू कर, कहीं से भी, अथवा जो सम यानी सम्यक रूप से ईयते अर्थात प्राप्त होता है वह समय, क्या कहते समय का अर्थ है सम्यक रूप से ईयते ने प्राप्त होता है वह समय अर्थात संप्राय कषाय कहलाता है। यहाँ कषाय को भी समय कहा हो, समय का एक शब्द और एक अर्थ ले लेना। इस प्रकार समय शब्द का यह एक अर्थ है, तथा प्रथम जो समय वह प्रथम समय है, प्रथम कषाय यह उसका अर्थ है। इसी प्रकार चरिम समय इस पद में भी जान लेना चाहिए यानी अंतिम कषाय, शेष व्याख्यान पहले के समान करना चाहिए। इसलिए कषायों में उपयुक्त हुए जीवों का तीन श्रेणियों द्वारा अल्पभूतव कथन करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध आया है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार गाथा के इस उत्तरार्ध से संबंध रखने वाले अर्थ का कथन कर अब वे तीन श्रेणियां कौन सी हैं, ऐसी आशंका होने पर आगे के पृच्छा सूत्र को कहते हैं। समझा वह जैसे यह सूत्र वचन सुगम है। विद्यादिया परमादिया चरमादिया ये तीन, द्वितीयादि का श्रेणी प्रथमामिका प्रथमादिका चाहिए, प्रथम आदि यानी पहले को पहले रखना, और चरमादि का श्रेणी। इस प्रकार ये तीन श्रेणियां हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी पंक्ति और अल्प बहुत्व परिपाटी, ये तीनों पद एकार्थक हैं। अल्प बहुत्व क्या अर्थ है? हाँ, अल्प केवल अल्प बहुत्व नहीं, अल्प बहुत्व परिपाटी उसका सीक्वेंस, उनमें से मान संज्ञा वाली दूसरी कषाय से उपयुक्त जिस अल्प बहुत्व परिपाटी से लेकर अल्प बहुत्व की परीक्षा की जाती है वह द्वितीय आदि का परिपाटी कहलाती है। द्वितीयादिका यानी द्वितीय से शुरू हुई ऐसी, मुझे ऐसे लगा कि द्वितीयादिका क्यों करता, द्वितीयादि की क्यों नहीं लिखी, वो श्रेणी का विशेषण बना दिया उन्होंने। श्रेणी स्त्रीलिंग है, द्वितीयाधिका श्रेणी यानी द्वितीय से शुरुआत होने वाली श्रेणी,
हाँ
प्रथमाधिका श्रेणी और चरमाधिका श्रेणी, ये विशेषण बना दिया उन्होंने आधिका कहकर। नहीं तो आधिका हम के वो का उसके लिए व्याकरण का वो षष्ठी विभक्ति का नहीं है, वो विशेषण बना दिया उन्होंने।
या फिर इसमें उल्टा लिखा है, पहले द्वितीयादि लिया है पीछे प्रस्तवादि लिया है।
यहाँ क्या कहते हैं, मान संज्ञा वाली दूसरी कषाय से उपयुक्त जिस अल्पभूतों परिपाटी से लेकर अल्पभूतों की परीक्षा की जाती है वह द्वितीयादि का परिपाटी कहलाती है, परंतु वह तीर्यंच और मनुष्यों में श चाहिए होती है। अल्प और बहुतों पर चाहिए ना यहाँ पर, तो उनमें ये अल्प है क्योंकि नारकियों में कैसे देखा था, क्रोधमान 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 देखा था,
वो
तो वहाँ वो ज्यादा है, यहाँ तो मान
कम
वाली कम है, उसको लेना पहले, क्योंकि उनमें मान कषाय से उपयुक्त तो हुए जीवों का स्तोक भाव से सबसे अधस्तन पना देखा जाता है। तथा यानी मान से शुरू किया ना, इसलिए द्वितीयाधिका का
हाँ।
ये प्रथम कषाय यानी क्रोध ऐसा लेना है
हाँ।
जिस अल्पभूतो परिपाटी में क्रोध संज्ञा वाली प्रथम कषाय से उपयुक्त हुए जीवों का स्तोक पने की अपेक्षा प्रथम पद का निर्देश किया है वह प्रथमाधिका परिपाटी कहलाती है। क्रोध से शुरू होने वाली
ये तो नाथी में क्रोध वाले अरे,
परंतु वह देवगति में होती है
ये देवगति
कम वाली चाहिए ना अल्प चाहिए। तथा जिस अल्पभूतो परिपाटी में लोभ संज्ञा वाली अंतिम कषाय से उपयुक्त हुए जीवों का सबसे स्तोक पना है, स्तोक अल्प और बहुत्व परिपाटी है मुख्य श्रेणी किस अपेक्षा से कर रहे हैं यहाँ पर, अल्प से बहुत्व की ओर। तभी नारकियों में ये क्या होगा, लोभ संज्ञा वाली अंतिम कषाय से उपयुक्त हुए जीवों का सबसे स्तोक पना है वह चरमाधिका परिपाटी कहलाती है, चरम से शुरू हुई चरमादि का परिपाटी। चरम कषाय है आदि में, क्या कहते हैं, चरम कषाय है आदि में जिस अल्पभूतव श्रेणी के, ये पूरा इतना ले लेना, क्या कहा इन्वर्टेड डालो उसमें, चरम कषाय है आदि में जिस अल्पभूतव श्रेणी के वह चरमादि। इस प्रकार प्रकृत में समास का अवलंबन दिया है, तो द्वितीयादि का कैसा वर्णन करेंगे, द्वितीय कषाय है आदि में जिस अल्प बहुत्व श्रेणी के, द्वितीय कषाय का यानी कौन से मान, हमें प्रथम और द्वितीय और अंतम में ऐसा वो तो उत्कृष्ट और जघन्य की अपेक्षा हम बात सोच रहे थे, वो नहीं बात, प्रथम यानी क्रोध, चरम यानी लोभ और द्वितीय यानी मान, माया से शुरू वाले नहीं है अल्प बहुत्व। परंतु वह नारकियों में होती है क्योंकि तीसरी लाइन, उनमें लोभ से उपयुक्त हुए जीवों की सबसे स्तोक रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार प्रकृत विषय में ये तीन ही अल्पभूत श्रेणियां संभव है, तीन ही होती है और वो भी अलग अलग जीवों की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्रकृत में इनके सिवाय दूसरा प्रकार उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर सर्वप्रथम द्वितीयाधिका श्रेणी के साधन करने के लिए संदृष्टि यह है, वे द्वितीयाधिका श्रेणी पहले कहेंगे, अब यहाँ कहेंगे ये तो संदृष्टि बना दी उन्होंने मानोपयोग का मानो व जुत्तद्धा, फिर क्रोधोपयोग काल, फिर मायोपयोग काल और लोभोपयोग काल। अब इस संदृष्टि द्वारा प्रकृत अर्थ का साधन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध का अनुसरण करते हैं। विद्यादियाय साहणम अब हाँ वो नहीं है, ये पूरी द्वितीयादि का है, ये चारों ही द्वितीयादि के, उसमें मान को पहले लिया, फिर क्रोध को, फिर माया को, फिर लोभ को, ये एक ही कौन सी द्वितीयादि श्रेणी के ये अल्पभूत चल रहे। मान सबसे थोड़ा है उसको पहले लिया, मान के बाद क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। द्वितीयादि है सहन। अब द्वितीयादि का श्रेणी की अपेक्षा साधन करते हैं, यानी द्वितीयादि का श्रेणी है एक नाम, उसकी अपेक्षा साधन करेंगे। वहाँ सर्वप्रथम द्वितीयादि का श्रेणी की अपेक्षा जीव अल्पभूतों के कथन का साधन करेंगे, अर्थात जीवों के प्रवेश काल से संबंध रखने वाले अल्पभूतों को कहेंगे। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मानव वजुत्तानम पवेशनयम थोवम, मान कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का प्रवेश काल सबसे थोड़ा है। यानी लगातार उसमें जीव आते रहेंगे। तिर्यंच और मनुष्यों में मान कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का प्रवेश काल उपरिम पदों को देखते हुए सबसे थोड़ा है। शंकाकार पूछते हैं, प्रवेशन शब्द से प्रवेश काल का ग्रहण कैसे शक्य है? इसका समाधान है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस काल में जीव प्रवेश करते हैं, इस प्रकार प्रवेशन शब्द प्रवेश काल के अर्थ में व्युत्पादित किया गया है। मेरे मान रूप परिणामक हो रहे एक के बाद एक के बाद एक, तो उसका जो लगातार का काल उसको कहेंगे प्रवेश काल। कोहोजुत्तानम पवेशनगम विशेषायम, उससे क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का प्रवेश काल विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। इसी प्रकार आगे माया कषाय और लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का प्रवेश काल विशेष अधिक जान लेना चाहिए, क्योंकि यह सूत्र देशामर्शक भाव से प्रवृत्त हुआ है। यथा इस प्रकार मान कषाय से लेकर परिपाटी क्रम से तिर्यंच और मनुष्यों में प्रवेश काल का विशेष अधिक बना है, इसलिए उस काल में संचित हुए, पहले तो प्रवेश पना लिया और उस काल में संचित, वहाँ मान रूप ही चल रहे, पहले तो प्रवेश की बात की, तो जब एक के बाद प्रवेश कर रहे जीव आवली के असंख्यात भाग काल तक, तो उतने काल में वहाँ मान रूप ही रहे, कोई तो अन्य रूप हो जाएंगे, कोई उसी कषाय रूप से रहते, तो कहते उनके संचित उस काल में संचित हुए मानादि कषाय में उपयुक्त हुए जीवों के भी विशेष अधिक पने की सिद्धि स्पष्ट रूप से बन जाती है। यानी एट ए टाइम मान में कितने जीव है, तो सबसे कम है, उसके बाद आगे आगे वाले विशेष अधिक हो। यह बिरियादियाए साहनम इस सूत्र से स्पष्ट रूप से सिद्ध है, क्योंकि प्रवेश काल के अनुसार संचय की सिद्धि न्याय प्राप्त है। परंतु इस पक्ष के अवलंबन करने पर यह विशेष एक उपदेश के अनुसार पल्लोपम के असंख्यातवे भाग के प्रतिभाग स्वरूप है, इस प्रकार यह उपरिम अनंतर सूत्र नहीं बनता है, क्योंकि प्रवेश काल में पल्लोपम के असंख्यातवे भाग के प्रतिभाग स्वरूप विशेष सब प्रकार से उत्पत्ति नहीं बन सकती, इसलिए यह प्रवेश कालों के अल्पभूतों का कथन करने वाला सूत्र नहीं है, किंतु कषायों के उपयोग कालों के भीतर प्रत्येक समय में प्राप्त होने वाले जीवों के प्रवेश के अल्पभूत की रक्षा करने के लिए यह सूत्र आया है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यथा मान कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का प्रवेश सबसे थोड़ा है, उससे क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का प्रवेश काल विशेष अधिक है, ऐसा कहने पर प्रथम समय में मान कषाय में उपयुक्त होकर प्रवेश करने वाली जीव राशि से उसी समय क्रोध कषाय में उपयुक्त होकर प्रवेश करने वाली जीव राशि विशेष अधिक होती है। यह अर्थ प्रकृति में ग्रहण करना चाहिए। उसी एक ही समय में जितने जीव मान कषाय में उपयुक्त होकर प्रवेश कर रहे हैं उससे क्रोध में उपयुक्त होकर प्रवेश करने वाली ज्यादा है। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में भी दोनों कषाय में उपयुक्त हुई जीव राशि का सन्निकर्ष करके, यानी इसके एक के साथ दूसरे को लगाना, अंतिम समय में उपयुक्त हुई जीव राशि के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मान कषाय में उपयुक्त हुए जीवों के अंतिम समय से ऊपर विशेष अधिक काल जाकर क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीवों का अंतिम समय होता है। ये तो आसान है ना समझना, क्योंकि मान कषाय में उपयुक्त रहने का काल छोटा है, उसका एंड आ गया तो फिर भी क्रोध का चल रहा है अभी तक। इसी प्रकार माया कषाय और लोभ कषाय की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। यथा इस प्रकार प्रत्येक समय में प्राप्त होने वाली मान कषाय में उपयुक्त हुए जीव राशि से प्रत्येक समय में प्राप्त होने वाली क्रोध कषाय में उपयुक्त हुई जीव राशि विशेष अधिक होती है। और यतः अधवान विशेष होता है, इस कारण से वहां पर संकलित जीव राशि का संचय भी उसी के अनुसार ही होता है। इस प्रकार यह द्वितीयादिका श्रेणी का साधन सुव्यक्त ही है। यानी वो मान लेते इतने लगातार उतने काल तक प्रवेश करने वाले जीव है, तो उसका संकलन धन करना तो उतने जीव वहां हो गए, पाए जाएंगे। इस व्याख्यान का यहाँ प्रधान रूप से अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि यह व्याख्यान अविरुद्ध स्वरूप है। रुकेंगे हम यहाँ पर। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।
नमो यत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणं नमो।